તારીખ 8/9/1995 પૂજ્યબેન શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 60 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 354.
આજ કા દિન ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્મ કા દિન ગિના જાતા હૈ. વિતરાગ ભાવ ધર્મ હૈ. वो धर्म ब्रह्म नाम आत्मा में रमणता करने से, चर्या करने से, जम जाने से वितराग भाव होता है. उसी को उत्तम ब्रह्मचर्य कहने में आता है. ब्रह्म का अर्थ होता है आत्म स्वभाव. जो त्रिकाली आत्म स्वभाव है उसको ब्रह्म कहते हैं. उसमें चरना, उसमें परिणमन करना, उसमें लीन हो जाना, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं. ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा है. गुरुदेव ने अपने प्रवचन में इसका स्पष्टीकरण दिया है. विकार और पंग पर का संग रहित आत्म स्वभाव कैसा है उसको जाने बिना उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं होता. जो आत्म स्वभाव है उसको ही नहीं जाने तो उसको उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं होता. लौकिक ब्रह्मचर्य है, यह शुभराग है, वो कोई धर्म नहीं है. और उत्तम ब्रह्मचर्य वो धर्म है किंतु वो राग नहीं है. शुद्ध आत्मस्वभाव की रुचि बिना विषय की रुचि किसी को छूटती नहीं. आत्मस्वभाव की निर्विकार चैतन्य की रुचि के बिना पर पदार्थ की पर विषय की रुचि का अभाव कभी नहीं होता. अनादि से वो संस्कार है जीव को, तो मिटता नहीं. उसको मिटने के लिए बलवान साधन चाहिए और आत्म स्वभाव जैसा कोई साधन नहीं है. मेरे स्वभाव में से ही मेरी सुख की दशा प्रकट होती है. सुख कहाँ से आता है? अपने स्वभाव से, स्वभाव में से आता है. और ऐसी मेरी सुख दशा प्रकट करने के लिए किसी पर पदार्थ की मुझे अपेक्षा नहीं है. जैसे कि अनुकूलताएं मिले तो मैं आत्म साधन कर सकूं, मेरा आत्मज्ञान ध्यान हो सके. प्रतिकूलता और उपाधि हो तो मेरे से नहीं हो सकेगा. ऐसा अभिप्राय की आड़ लगाना चाहिए नहीं. ऐसा कहते हैं कि मेरे स्वभाव में से ही मेरी सुख दशा प्रकट होती है. मेरी सुख दशा प्रकट करने के लिए मुझे किसी भी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है. यानी अनुकूल प्रतिकूलता की कोई अपेक्षा नहीं है. ऐसे क्यों? तो मैं इससे भिन्न हूं. भिन्न हूं तो उसकी अपेक्षा नहीं रहती. ऐसे पर से भिन्न स्वभाव की दृष्टि हुए बिना पर विषय की रुचि छूटती नहीं है. पर से भिन्न अपने आत्म स्वभाव की रुचि हुए बिना पर पदार्थ की रुचि कभी छूटे नहीं. बाहर में पंचेंद्रिय के विषय लोग छोड़ते हैं, धर्म के क्षेत्र में आकर के त्याग करते हैं. तो पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, परंतु अंतर में से विषय की रुचि न छोड़े तो उनको ब्रह्मचर्य आदि व्रत होता नहीं. लोग स्त्री घर बार को छोड़ करके त्यागी हो जाते हैं, अशुभ भाव छोड़ करके शुभ भाव करते हैं, परंतु उस स्वभाव में जिसको रुचि है, उस स्वभाव में जिसको रुचि है और धर्म बुद्धि है, रुचि है और धर्म बुद्धि से स्वभाव करते हैं, उसे वास्तव में विषयों की रुचि नहीं छूटी है। शुभ या अशुभ विकार, शुभ या अशुभ विकार परिणाम में एकता बुद्धि विभाव भाव में एकत्व परिणमन हो जाना, एकता बुद्धि हो जाना, वही अब्रह्म परिणति है, वही अब्रह्मचर्य है। यहां से अब्रह्मचर्य स्वरूप होता है और विकार रहित शुद्धात्मा में परिणाम का एकत्व होना, यही ब्रह्म परिणति है, यानी उत्तम ब्रह्मचर्य उसको बोला जाता है। और यही उत्तम ब्रह्मचर्य कहो या परमार्थ ब्रह्मचर्य कहो, वो ऐसा ही होता है। यहाँ तो सम्यक दर्शन पूर्वक मुनिराज को जो चारित्र दशा के ब्रह्मचर्य की बात है, वो बात पद्मनंदी पंचमिष्टी में आचार्य महाराज ने किया है। जगत के सर्व विषयों से उदासीन होकर के आत्म स्वभाव में जिसकी चर्या प्रकट हुई है, आत्म स्वभाव में वो रमणता करते हैं, ऐसे मुनिराज को उत्तम ब्रह्मचर्य होता है और उसके फल में उनको परमात्म पद की प्राप्ति अवश्य अवश्य होती ही है, क्योंकि आत्म स्वभाव में रमणता करना यही परमात्म प्रगट परमात्म पद प्रकट करने का एकमात्र उपाय है। स्वरूप में स्वभाव में एकता करके पर से निरपेक्ष हुए, वहाँ जो वितराग भाव प्रकट हुआ उसी को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहने में आता है। इस प्रकार से जो दसों प्रकार का धर्म कहा, वो एक वितराग भाव का ही दस प्रकार से वर्णन किया है। जो वितराग भाव को समझते हैं वो दसों प्रकार को समझ सकेंगे, जो वितराग भाव को समझते नहीं, पहचानते नहीं, उनको ये दस लक्षण धर्म व्यवहार दृष्टि से समझ में आएगा, लेकिन उसका सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक आज के धर्म के समझ में। बहन श्री के वचनामृत में वचनामृत 60, हिंदी प्रति में पेज 23 है, गुजराती में 60 नंबर का वचनामृत है, 21 नंबर नो फानूक है। अनादि काल से अज्ञानी जीव संसार में भटकते भटकते सुख की लालसा में विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते अनंत दुखों को सहता रहा है। किसकी बात करते हैं? हमारा पूर्व इतिहास की बात करते हैं, जो संसार में परिणमन कर रहे हैं, मुक्ति को पाए नहीं, ऐसे सभी जीव, उसमें हमारा भूतकाल भी आ जाता है। अनादि काल से परिभ्रमण किया, किस कारण से? अज्ञान से किया। अपना स्वरूप के विषय में भी अज्ञान रहा और पर पदार्थ के विषय में भी अज्ञान रहा। संसार में भटकता रहा, परिभ्रमण करता रहा और परिभ्रमण के दौरान सुख की लालसा रही जीव को, सुख के पीछे उनको बहुत दौड़ा, बहुत परिश्रम किया, बहुत भटका और फल स्वरूप में अनंत दुखों को सहन करना हुआ, अनंत दुख सहन करता रहा है। ऐसी जीव की अनादिकाल से परिस्थिति रही है। ऐसी परिस्थिति में भी कभी कभी उसे सच्चा सुख बतलाने वाले ज्ञानी पुरुष भी मिले, तीर्थंकर आदि मिले, कभी ऐसा योग भी हुआ है। तो शंका रखकर अटक गया, तो उसने कहने वाले में शंका कर ली। कहने वाले निर्दोष थे, प्रमाणिक थे, फिर भी हमारी मति विपर्यास के कारण से हमने कहने वालों में शंका किया। खास करके जो साधक होते हैं वो बात तो पूर्ण शुद्धि की कहेंगे, और साधकपना होने से अपने में पूर्ण शुद्धि नहीं होगी, आचरण में पूर्ण शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि साधक है। अगर आचरण में पूर्ण शुद्धि हो जाए तो सिद्ध हो जाते, साधक नहीं रहते, पर सिद्ध हो जाते तो कहने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि सिद्ध भगवान को वाणी नहीं होती। तो परिस्थिति यह है कि जो सिद्ध नहीं है और साधक है, पर बात करेंगे सिद्ध पद की, पूर्ण शुद्धि की। तो सामान्य मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपना आचरण का तो ठिकाना नहीं दिखता। पूर्ण शुद्धि की बात करो, बात करो पूर्ण शुद्धि की, और आचरण में तो राजा भी दिखते हैं, अशुद्ध भाव दिखते हैं। तो कहने वाले पर जो अगला सुनने वाला है वो शंका करता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सामान्य बुद्धि, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसलिए उसको शंका हो जाती है। और शंका जब होती है तो उनको कहने वाले का उपदेश परिणमन होता नहीं है, इस उपदेश का उनको परिणमन नहीं होता। तो उनका जो अपना आत्महित करने का था वो छूट गया, वो चुक गया, वो
छूटने का अवसर बंदा,
हाँ, छूटने का अवसर पर ही उसने गड़बड़ कर दिया। ऐसा हमने भूतकाल में बहुत बार किया है, इसलिए इस बात का यहां निर्देश किया जाता है कि ऐसी भूल कभी फिर से नहीं होए। क्या कहते हैं कि अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए, अनंत प्रकार के दुख को सहन करते हुए जी सुख की लालसा में भटका, कभी कभी उसे सच्चे सुख बतलाने वाले मिले कि देख तेरा सुख तो तेरे आत्मा में है, अंतर्मुख होकर के उसको प्रकट कर। तो कहने वाले में शंका किया और शंका रखकर अटक गया या भूला चुका। कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा। क्या कहा कि कभी तो सच्चा सुख बतलाने वाले पर शंका नहीं की, लेकिन उपेक्षा रखी, अवगणना किया, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, ऊपर ऊपर से चला कि ठीक है, ऐसे आत्मा की बातें आजकल सब लोग करते हैं, क्या है इसमें। तो अपने जो बाह्य सुख की रुचि में अंतर सुख की बात ध्यान से सुनी नहीं, या अपना लक्ष्य गया नहीं कि हमको ये कार्य कर लेना चाहिए। कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा। जो यदि सुनना ही है तो ध्यान से सुनना चाहिए, उपेक्षा से सुनना और नहीं सुनना दोनों बात एक से हो जाएगी, क्योंकि वो उपदेश परिणमन उसका फल परिणमन में नहीं आएगा। तो जो अनंत सुख स्वरूप अनंत सुखधाम अपना आत्मा है उसको प्राप्त करने में अनुभव करने में वंचित रह जाएगा। वो उपेक्षा करता है तो उदय भाव में तीव्रपना है तब तो उपेक्षा हो जाता है। यदि जीव सुनने के काल में अपना सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय को खोजता हो, उसकी खोज में खड़ा हो, तो सुनने सुनते वक्त वो बात को वो ध्यान में लेगा कि ये सच्चा सुख कैसे उत्पन्न होता है, इसे कैसे प्रकट होता है, इसकी विधि क्या है, इसकी कार्य पद्धति क्या है, वो बात को वो समझने के लिए लालायत रहेगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में नहीं है तो सुनने वाले पे उपेक्षा करेगा, उपेक्षा करेगा तो वो बात उसकी समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार से सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा, ऐसा कभी बना, कैसा कैसा प्रकार बना जिससे जीव अपना वास्तविक मार्ग पे धर्म के मार्ग में मुक्ति के मार्ग में आ सका नहीं। तो कभी पुरुषार्थ किए बिना अटका रहा, सुना सही, सुना भी, समझा भी और समझ करके सम्मत भी किया कि बात तो ठीक है, जो गुरुदेव कहते हैं वो बात सच्ची है, हम बराबर बुद्धि से समझ करके इस बात को सम्मत करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया, उस विषय में जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास नहीं किया। क्यों प्रयास नहीं किया? कि सुनने पर भी उसकी जरूरत जो महसूस होनी चाहिए वो जरूरत महसूस नहीं हुई। जरूरत लगे और प्रयास जीव करे नहीं, वो जीव का स्वभाव में नहीं है। जिस जिस चीज की जीव को जरूरत लगती है उसके पीछे वो प्रयास किए बिना नहीं रहा। तो यहां पर भी जिसको निराकुल आत्मा के सुख की जरूरत लगे उसकी बात सुने समझे और प्रयास न करे ऐसा बन सकता नहीं है, लेकिन उसको जरूरत नहीं लगी।
ज्ञान पुरुषार्थ का उत्पादक है, इसका मतलब इसको दुख का भी ज्ञान नहीं हुआ इसलिए पुरुषार्थ नहीं किया।
हाँ,
सच्चा ज्ञान इसको नहीं
हुआ। यथार्थ ज्ञान होता है ये पुरुषार्थ का उत्पादक ही होता है, इसलिए समझा सम्मत किया लेकिन यथार्थपना नहीं था, वो बात है।
बात तो उसका हित का था।
मैं
बात तो उसका हित का था।
हाँ,
उपेक्षा क्यों कर दिया?
ये उपेक्षा जीव करता है क्योंकि उनको वर्तमान में जो परिस्थिति है उसका खिंचाव ज्यादा है, इसको हम प्रतिबंध कहते हैं। प्रतिबंध में खड़ा है, समाज का प्रतिबंध, कुटुंब का प्रतिबंध, शरीर का अनुकूलता प्रतिकूलता का साता साता का प्रतिबंध। तो बात सुनता है लेकिन वो बात का कोई असर पहुंचता नहीं, अवरोध है आगे प्रयास करने में अवरोध है। पुरुष देखो, पुरुषार्थ बिना का कोई जीव नहीं है, आगे आ जाओ। ऐसे पुरुषार्थ बिना का तो कोई भी जीव नहीं है। पुरुषार्थ तो मैंने वीर गुण की वो पर्याय है, तो पुरुषार्थ तो होता ही रहता है सबका, लेकिन कहां होता है? जहाँ रुचि होती है वहां होता है, रुचि अनुयायी वीर्य। जहाँ रुचि होती है वहां पुरुषार्थ होता है, और रुचि कहाँ होती है, जहाँ जरूरत लगती है वहां रुचि होती है। तो मूल में जरूरत से ये पुरुषार्थ की लाइन पैदा होती है। अपने को निराकुल सुख, आत्मिक सुख की जरूरत है कि नहीं है, या वर्तमान में हमारे संयोग में हम संतुष्ट है, वो बात अपने परिणाम को अवलोकन करके चेक करनी चाहिए।
वर्तमान में मैं कितना दुखी हूँ इसका भी इसको ज्ञान
नहीं है।
इसका ज्ञान हो तो पुरुषार्थ
अपने आप। वर्तमान में दुखी हूँ सुखी हूँ कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, यथार्थता ही नहीं है समझ में, यथार्थता नहीं। ऐसे शास्त्रों की बात तो जो समझता है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों की बात कोई समझ में नहीं आती है, समझे भी सम्मत करे भी बौद्धिक स्तर से, परंतु यथार्थता नहीं होती है तो काम आगे नहीं चलता। तो यथार्थता होना वो जरूरी है। जो समझता नहीं, समझ में जिसको आता नहीं, उनको तो समझने की जरूर अवश्य है, लेकिन समझे सम्मत किया तो ज्ञान हो गया ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि समझ लिया इसलिए ज्ञान हो गया, उसमें यथार्थता आएगी तो उसका प्रयास चालू होगा। ये यथार्थता आई है नहीं आई है वो कैसे समझ में आए, कि प्रयास चालू हुआ तो यथार्थता है और प्रयास नहीं चालू हुआ तो यथार्थता नहीं है। बस यहां से नाप निकलता है इसका। हाँ हाँ, दर्शन मुख की तीव्रता का परिणाम चालू है, मतलब कृपालु देव ने उसमें बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया है, युक्ति से समझाया है कि जिसने मोटी रजाई ओढ़ी हो, जादू गोदड़ो, उसको श्री गुरु के वचन के उपदेश की लकड़ी लगती नहीं है। जादू गोदड़ो ओढ़ी हो तो लाकड़ी ना आ गया उपदेश ने, और जिसने पतली चद्दर ओढ़ी हो, कैसे एकदम बारीक धोती जैसी चद्दर ओढ़ी हो, उसको लकड़ी मारे तो लगती है। तो जिसको दर्शन वो तीव्र है उसने मोटी रजाई ओढ़ी है, और जिसका दर्शन वो पतला हुआ उसको गुरु के उपदेश का तुरंत असर होता है।
वो बड़ी डांग
की जरूरत है, वो बड़ी डांग लेते भी हैं, लेकिन हम इससे तगड़े रजाए फोड़ करके बैठे हैं, इसका क्या करेंगे? फेरफार डांग में करना है या फेरफार ओढ़ा है उसमें करना है, कहाँ करना है फेरफार? हम तो उतनी की उतनी मोटी रजाई ओढ़ेंगे, आप ज्यादा बड़ी रखड़ी लेना, आप बड़ी रखड़ी लेना, ऐसा नहीं। हमको दर्शन वो यथार्थ प्रकार से मंद करना चाहिए ही चाहिए, तभी उपदेश का असर होगा। इसके बिना उपदेश का असर होने वाला नहीं है। उपदेश का असर नहीं आएगा तो पुरुषार्थ उठेगा नहीं। सुनेंगे, सुन करके घर चले जाएंगे, रोज सुनेंगे, रोज घर चले जाएंगे, रोज आएंगे सुनने को, रोज घर चले जाएंगे, बस।
मेरे को अपना हित कर लेना है, दर्शनों का क्या संबंध है? मेरे को अपना हित कर लेना है, दर्शनों का क्या संबंध
है? अपना हित करना है, उसमें एक हमारा सवाल है कि एक अपना हित ही करना है या और कुछ भी करना भी है? जैसे हम हित करते हैं, हित करने को जाते हैं तो हमारे परिणाम क्या होते हैं कि वर्तमान परिस्थिति से उदास होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? जब हमारे परिणाम वर्तमान संयोग से उदास होते हैं तो हमारे परिवार वाले नाराज होंगे कि नहीं होंगे, कि आप क्यों अब ऐसा निरस वर्ताव करते हो, पहले तो हमारे साथ कैसे अच्छे वर्ताव करते थे, बहुत अच्छे वर्ताव करते थे, आजकल आपके जो परिणाम हैं बिल्कुल उदास उदास दिखते हैं, ये बात हमको नहीं सुहाती, ऐसा धर्म नहीं करो, आप धर्म करो तो हम भी राजी खुशी रहे, ऐसा करो। हाँ, और हमको भी प्रतिबंध है तो हम वो नाराज हो गए दूसरे लोग, तो हम चाहते नहीं है, जो हमारे वाले हैं कौन है, हमारे वाले हैं वो
मारने वाले
हैं,
हमारे मारने वाले,
हमको मारने वाले हैं, ठीक है, हमारे वाले कौन है हमको मारने वाले, वो मारते हैं क्या हैं? हम खुद अपने आप से मार खाते हैं अपने परिणाम से, वो तो कोई मारते नहीं, नहीं मारते ऐसे भी नहीं है, आरोप उसके पर लगाना चाहिए नहीं, हम हमारे परिणाम से मार खाते हैं। तो हमको आत्महित करना है वो बात रहती ही नहीं है, एकमात्र आत्महित करना है अगर ऐसे परिणाम है तो दर्शन वो अवश्य अवश्य मंद होता ही है, लेकिन हमको सबको राजी रखना भी है और हमारा आत्मकल्याण करना भी है, तो दो एक म्यान में दो तलवार तो रहती नहीं, कभी रह सकती नहीं।
भयंकर परिभ्रमण की चिंता न होनी, ये सबसे बड़ा दर्शन मोह।
हाँ, वहां से दर्शन मोह इतना बड़ा है तो जो चिंता का विषय है उसकी चिंता नहीं हो रही है, जो वास्तव में चिंता का विषय है उसकी भी चिंता नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? दर्शन मोह तगड़ा है, सीधी बात है। वो तो
छोटी मोटी चिंता होती है, बड़ी चिंता नहीं होती है।
ये हमारा सामान्य कैलकुलेटर भी फेल हो गया, एक मरण की चिंता इतनी है हमको कि हम आकाश पाताल एक करके भी मरना नहीं चाहेंगे। हाँ, अमेरिका से डॉक्टर बुलाओ, अमेरिका से दवाई इंजेक्शन मंगा लो, लेकिन हमको नहीं मरना है। एक मरण की चिंता इतनी, दो मरण की डबल हो गए कि नहीं, और अनंत मरण की अनंत होनी चाहिए। ये तो सामान्य गिनती का विषय है, लेकिन हमारा दर्शन वो तो गिनती को भी फेल करता है। दर्शन से बुद्धि की विभ्रमता इतनी है कि हम वास्तविकता को देख सकते हैं, जब ये वास्तविकता को नहीं देख सकते तो इसका फल भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई बचा सकेंगे नहीं।
ऐसा
होने
पर नींद अच्छी आती है,
है?
ऐसा है तो भी नींद अच्छी आती है।
हाँ, इतनी चिंता होने पर भी हम आराम से खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, ये बात बनती है।
चिंता नहीं है तो सो जाते हैं, चिंता नहीं है तो सो जाते हैं।
हाँ, नहीं है तो सो जाते हैं, चिंता का विषय है फिर भी चिंता नहीं है तो सो जाते हैं।
कितना अचेत है जी,
और चिंता होती तो नींद आएगी नहीं, चिंता में तो नींद आ ही नहीं सकती, ऐसी तो परिस्थिति सबको अनुभव गोचर है, तो ये परिस्थिति बननी चाहिए। कभी पुरुषार्थ किए बिना अटक रहा तो कभी पुरुषार्थ किया भी तो थोड़े से पुरुषार्थ के लिए वहां से अटका और गिरा, आगे नहीं बढ़ा पा, पीछे गया, ये भी कभी बनता है कि किसी को थोड़ी बहुत यथार्थता आती है, लाइन मिलती है, थोड़ा आगे भी बढ़ता है, पुरुषार्थ भी होता है, फिर थोड़ा पुरुषार्थ किया और बाकी जो थोड़ा रहा वो आगे नहीं किया। फिर उदय भाव में हार गया, क्या हुआ? उदय तो आएगा। क्या होता है कि जीव ने पूर्व में संसार के परिणाम किए और ऐसे ही कर्म बंधे, उदय तो उसका आएगा ही आएगा। अब थोड़ा पुरुषार्थ चला और उदय तो सामने आएगा। उदय आया है खेलने के लिए। उदय क्यों आया है? खेलने के लिए। क्यों? कि यहां पुरुषार्थ चला तो इसकी स्थिति जो है सत्ता में वो तो अपकर्षण होके एकदम उदय में आएगा, स्थिति कम हो जाएगी, कम होकर के एकदम सामने आएगा। अगर सामने आया और उस वक्त हार गया वो फिर गिरा। ऐसा बहुत बार बना है, ऐसा भी बहुत बार बना है। इसलिए कोई भी उदय आए सुरवीर होकर के, कैसे तलवार खींचना बराबर, हाँ तो आओ कोई भी, अब मैं ऐसा तैयार हुआ हूं कि कोई भी उदय आ जाए सामने, हाँ अब मैं पीछे पीछे वापस मुड़ जाऊं, मेरे परिणाम गिर जाए ये होने दूंगा
नहीं।
अभिप्राय में पूर्व से उतनी मजबूत निश्चय ऐसा होता है, पूर्णता के लक्ष्य में ऐसा निश्चय होता है। पूर्णता का लक्ष्य कि निर्धार का स्टेज है, वास्तविक शुरुआत यहां से होती है। वो पीछे उसको कभी गड़बड़ होगी नहीं। अच्छा निर्धार हुआ, पक्का यथार्थ निर्णय हुआ कि चाहे जैसा हो जाए, आदि व्याधि उपाधि उपसर्ग परिसर किसी भी प्रकार का दुख सहन करना पड़े कोई बात नहीं, दुख है ही नहीं। हमारे जैसे को तो कोई दुख जैसी चीज है ही नहीं। देखो भय नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है कि हम किसी से हार जाए, हम डर जाए या हार जाए तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। होगी दुनिया की डिक्शनरी में, लेकिन हमारे डिक्शनरी में वो कैंसल हो गया है, वो शब्द ही कैंसल हो गया है। उतनी तैयारी होनी चाहिए फिर तो आपत्ति नहीं, वरना लड़खड़ा जाओगे तो हार जाओगे। और अनंत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। जी वो कृपा लोग लिखते ने कि ये जो गांठ है परिभ्रमण के जो दर्शन मुखी गांठ है वो छेदने को समय बहुत बार आया है। ग्रंथि भेद उसको क्या बोला है? ग्रंथि भेद। ग्रंथि भेद तक अनंत बार पहुंचा है लेकिन पुरुषार्थ के अभाव में पीछा पीछे पड़ा, गिर गया। तो फिर पृथ्वी भ्रमण चालू रह गया।
पूर्णता का लक्ष्य की क्षति रह गई।
हाँ पूर्णता का लक्ष्य अगर यथार्थ आया तो ये बात होने वाली
नहीं
है।
ऐसे मौके पर सतपुरुष के सानिध्य में रहे तो
फर्क पड़ता है, सानिध्य में रहते हैं तो फर्क पड़ता है, वो बात जरूर है। इसलिए तो सत्संग में रहना आवश्यक लगता है। ज्ञानी खुद रहना चाहते हैं तो मुमुक्षु तो रहना चाहेंगे ही, उसमें कोई सवाल
नहीं है।
सत्संग जैसा आधार और आश्रय स्थान मुमुक्षु को और दूसरा है ही नहीं, ये बात है। इसलिए उसको कल्प वृक्ष कहा है, लेकिन कल्प वृक्ष की उपमा भी छोटी पड़ती है। वास्तव में तो ये कल्प वृक्ष की उपमा भी छोटी पड़ती है, ऐसी बात है।
इक्यावन
पुरुषार्थ सूचक है वो। आकाश पाताल भले एक हो जाए, परंतु भाई तुम अपने ध्येय को मत चुकना। यानी कोई भी प्रसंग का संयोग का फेरफार हो जाए, क्या कोई भी प्रकार का संयोग में उठल पाथल हो जाए, अनाप शराप कोई भी हो जाए, परंतु अपना ध्येय को चुकना नहीं। वो पूर्णता का लक्ष्य वो ध्येय के स्थान में है। अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं। अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, अपने आत्मार्थ से डिगना नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, हमें डिगाने वाले दूसरे है कौन? हाँ, इस जगत में कोई हमारे सामने आ सकते हैं नहीं है।
छेदाओ, भेदाओ,
कोई ले जाओ, कोई ले जाओ, अरे कुछ भी हो जाओ, हमको कुछ होने वाला
नहीं है।
हम शाश्वत है, अव्याबाद स्वरूप है। हमारे प्रदेश में से एक प्रदेश को भी कोई छू सकता नहीं है। फिर चिंता काहे की? किस बात की चिंता है? कोई चिंता करने की जीव को जरूरत
नहीं है।
आपने कहा ना कि टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा,
टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा। ये चैतन्य वज्र है। हम कौन है? हम तो चैतन्य वज्र है। हमारे साथ कोई टक्कर खाएगा तो उसका चूर चूर हो जाएगा। आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, किसी भी कीमत में पूर्ण करना। इसके लिए कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है। कोई भी कीमत लग जाओ, हमको करना है तो अवश्य सिद्धि होगी। देखो गारंटी दिया है बेंसरी के रचनामृत में, हर जगह वो बात है। वो बराबर तसल्ली देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप निष्फल होने वाले
नहीं है,
आपका कार्य सिद्ध होगा, होगा और जरूर होगा। ऐसी बात है, आज्ञा है, सब कुछ है। क्या भी अपना इसके पीछे लग जाना
चाहिए।
सारे जगत को गौण करके, अनुकूल प्रतिकूलता क्या, सारे जगत को गौण करके एक अपने आत्महित के कार्य में अग्रसर होना चाहिए।
कफन बांध के निकलता है।
हाँ, आत्महित करता है वो कफन बांध के
निकलता है।
उनको मृत्यु का डर नहीं, और किसका डर लगेगा? अनुकूलता प्रतिकूलता कोई चीज ही नहीं है उसके सामने। मान सम्मान में भी कौन फंसता है? कि जिसको कल्पना हो जाती है मान सम्मान की। मान सम्मान क्या चीज है? तुम ही तीन लोग का नाथ हो। हाँ,
इससे बड़ा क्या?
इसके आगे तो कोई पद
नहीं है।
अब उच्च पद को छोड़ करके निज पद में राजी होना, ये कल्पना के सिवा और कुछ क्या है? ये तो मूर्खता है। उच्च पद को तो भूल गया, पर निज पद के लिए मान सम्मान में अटका, तो ये तो कोई शादी समझ भी इसमें
नहीं है।
ऐसी बात है। मान अपमान जैसी चीज क्या है? वो क्या चीज होती है? वो कोई चीज ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है। वो तो अवस्तु है, वस्तु ही नहीं है ने? तो किसी ने अपमान क्या, मतलब क्या, कि किसी के परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। हाँ, क्या कुछ भाषा भी निकली, क्या कुछ प्रवृत्ति भी कर लिया, कोई मारण ताड़न भी हो जाता है। हमको कोई छू सकता नहीं, इनके परिणाम इनके, और जड़ के वाणी आदि के परिणाम जड़ में, हमें कौन से लेना देना है, हम तो सर्वथा इससे भिन्न है। जब सर्व से सर्वथा भिन्न है, अरे अपना शरीर से भी देहातीत स्वरूप है, तो फिर दूसरे का बोलना चालना इसकी चेष्टा हमको तो कोई लेना देना इससे होता ही नहीं। ये अपेक्षा वृत्ति वाले का काम है, जिसको मान चाहिए उसके जैसा दीन और भिखारी दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो दूसरे से भीख मांगेगा, अपेक्षा रखेगा कि मुझे यहां से मान मिले, वहां से मिले, उधर से मिले, इधर से मिले।
प्रतिकूलता से ज्यादा मान सम्मान में जीव का अटकने का
खतरा लगता है, लेकिन किसको उस प्रकार की कल्पना में बहता है, उसको जिसको बराबर यथार्थ समझ आ गई कि यह वस्तु है, कुछ है ही नहीं, फिर वो इस कल्पना में कभी चढ़ेगा नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ हाँ, तीर्थंकर भगवान तिलक करते हैं, तुम ही हमारे समान हो और तुमको तुम्हारी सीट भी हमारे बगल में रखेंगे, नीचे देखो समूह शरण में जो भी मुनिराज है वो भगवान के उपदेश सुनते सुनते केवल ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। बहुत से मुनि कितने, लाखों केवली होते हैं, कितने होते हैं, लाखों केवली होते हैं, तो समूह शरण में वो बैठे हैं, जैसा केवल ज्ञान हुआ 500 धनुष ऊंचे भगवान के बराबर आकाश में उनका सीट लग जाता है, नीचे कमल की रचना हो जाती है और ऊपर वो विराजमान अंतरिक्ष में रहते हैं, तो कमल को स्पर्श करते हुए नहीं, थोड़ी बीच में गैप रहता है और ऊपर 500 धनुष ऊंचे आकाश में जहां तक आयु है वहां तक वो विराजमान अरिहंत पद में रह जाते हैं। तो वो कहने की चीज नहीं है, वो तीर्थंकर भगवान ने मात्र बोला है राजी करने के लिए कि तुम हमारे समान हो, ऐसा नहीं है, हम तुमको हमारे पास बिठाते हैं, वास्तव में बिठा देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मात्र बोलने की चीज है, ऐसा ही बनता है वहां। पारसमणि लोहा को सोना करता है, आता है ना, पारसमणि जो है लोहे को स्पर्श करता है तो वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। यहाँ तो ये तीर्थंकर देव ऐसे पारसमणि है, तो स्पर्श करते अगले को भी पारसमणि बना देते हैं, ऐसा बनता है। और कहीं केवलियों को भी वाणी होती है तो उनका भी समोसरण लगता है, तीर्थंकर नहीं होने के बावजूद भी
लगती है।
हाँ, गंधकुटी लगती है, उनका भी समोसरण होता है, हाँ जैसा ही होता है, वहां भी लोग सुनने को आता है, उनको वाणी खिरती है और कहीं लोग वो पारसमणि से दूसरे पारसमणि बनने लग जाते हैं, ऐसे लाइन लग जाती है, पारसमणि से पारसमणि, पारसमणि से पारसमणि, ऐसा भी बनता है, आता है पद्म पुराण में। मुनि सुव्रतनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उसी समय में रामचंद्र जी के उद्यान में
हैं,
हाँ वो आए थे,
रामचंद्र जी
पहले जब वो छद्मस्थ थे मुनिराज, केवली नहीं हुए थे, तब रामचंद्र जी ने वनवास में उसका उपसर्ग दूर किया था, वही केवल ज्ञान प्राप्त करके अयोध्या के उपवन में आए थे, तो रामचंद्र जी सुनने को जाते थे, ऐसा बनता है।
कैसा दृश्य होता होगा, हमारे बीच में बैठे थे अभी 500
में, ऐसे वहां सीधा समोसरण में, समोसरण में सम श्रेणी में, तिरछे नहीं जाते, सीधे ऊपर जाते वर्टिकली, और ऊपर 500 धनुष ऊंचे उनका आसन लग जाता है, वो शुक्ल ध्यान में विराजमान रह जाते हैं। क्या कहते हैं इधर, कि कभी पुरुषार्थ भी किया तो थोड़े से पुरुषार्थ के लिए वहां से अटका और गिरा, अटका और
गिरा,
अटक जाएगा तो गिर जाएगा, या तो आगे बढ़े या तो अटक करके गिर जाए। इस प्रकार जीव अपना स्वरूप प्राप्त करने में अनंत बार अटका या अनंत बार चुका, ऐसा भूतकाल में बहुत बना है। अब ऐसा होने देंगे नहीं, ऐसा लेना है, आगे बहुत बना, अब नहीं होने देंगे, ऐसा मजबूत अभिप्राय और परिणाम हो जाना चाहिए, ऐसा निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निर्धार होना चाहिए। पुण्योदय से ये देह प्राप्त हुआ क्या, ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ मैंने, यह देह मैंने मनुष्य भव जो प्राप्त हुआ, ये अनंत पुण्य का थोक है। बहुत एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना मुश्किल है, पंचेंद्रिय उसमें भी संगनी पंचेंद्रिय उसमें भी यह दशा प्राप्त हुई, सच्चा धर्म परम सत्य हमारे सामने आया, बहुत अच्छा मौका है।
क्वालिटी कैसी होती है?
ये बिल्कुल अलग अलग प्रकार का पुण्य की क्वालिटी है। नहीं, वो एक ऐसे विशुद्धि होती है, इसको विशुद्ध पुण्य कहते हैं। हाँ, उसको पुण्य कहना नहीं, उसको विशुद्धि कहते हैं शास्त्र में, जिसमें दर्शनों की मंदता होती है। तो ये बहुत बहुत अच्छा मौका है,
ऐसा पुण्यशाली जीव है, सब कुछ प्रत्यक्ष मिले। कल की दो रोटी की चिंता करता
था, ऐसा मौका मिले पर कल की चिंता में पूरा पूरा मौका खो देता है। वो भी कितने कल की चिंता, कितने दो रोटी खाने की, चार रोटी खाने की, कितना आटा होता है, इतना आटा होता है, इतने आटा के रजकण के पीछे पूरे परमात्मा को बेच देना क्या, हाँ क्या करना है, वो करने लायक चीज नहीं है। पुण्योदय से ये देह प्राप्त हुआ, ये दशा प्राप्त हुई, समझने जैसी योग्यता भी रही और इतना पुरुषार्थ तक भी पहुंचा, यह दशा प्राप्त हुई मैंने इतना पुरुषार्थ तक भी पहुंचा, ऐसे सत्पुरुष का योग भी मिला, सब अवसर आ चुका है ऐसा कहते हैं। अब ये भी पुरुषार्थ नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, फिर तो तुम कभी करने वाला है, इधर हार गया या इधर पीछे पड़ा तो फिर तुम्हारी बारी आने वाली नहीं है, वो समझ लेना। अब यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा, यानी कब करेगा, बताओ, प्रश्न पूछते हैं। हे जीव, देखो क्या संबोधन है, हे जीव पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, तुम आगे बढ़े, ऐसा सुयोग एवं सच्चा आत्मस्वरूप बतलाने वाले सत्पुरुष बार बार नहीं मिलेंगे। कृपालु देव तो सत्पुरुष की बहुत बात करते हैं, देखो भैंसरी ने भी सत्पुरुष की कितनी अच्छी बात किया है कि हे जी तुम पुरुषार्थ कर, ऐसा सुयोग मनुष्य दे, सच्चा जैन धर्म, जैन धर्म में सच्चा जैन धर्म, नाम से तो अनेक चलते हैं, ऐसा सुयोग एवं सच्चा आत्म स्वरूप बतलाने वाले, सच्चा मार्ग बतलाने वाले, उपाय बतलाने, इलाज बतलाने वाले, मुक्ति का, ऐसे सत्पुरुष तुमको बार बार मिलने वाले हैं नहीं है। कभी मिलते हैं अगर तुमने मौका उठा लिया तो शाबाश है, धन्यवाद है, अगर तुमने मौका खो दिया तो इसके इससे बड़ा अफसोस और सफेद आश्चर्य दूसरा होगा नहीं। तो ऐसे करके इस वचनामृत में जो है और पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। वो जो ये जो सारा वचनामृत है वो पुरुषार्थ प्रेरक है, प्रेरणा का वचनामृत है। वचनामृत का सब्जेक्ट क्या है? प्रेरणादायी है वो। तुम पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छा मौका मिला है, अब मत छोड़ना। और आयु भी काफी चला गया, जितना चला गया वो तो वापस नहीं गया, अब थोड़ा बहुत जो रह गया है काम कर ले, उठा ले, वो भी अनिश्चित है। बाकी रहा है उसका कोई भी नियम नहीं है कि कब छूटेगा। तुम शीघ्र काम करने के लिए तैयार हो जा और अपना समय बिना गमाए अपना काम कर ले। किसी के लिए समय बिगाड़ना नहीं चाहिए।
इसमें तो मैसेज गाड़ी उपड़ी
है।
ऐसी बात है।
जय हो जय।